नमस्कार भारत, तारीख 2 सितंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत के वामपंथी मजदूर संगठनों की है आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल।
जो बेसिक डिमांड है मिनिमम वेज पर है, लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, ये सारे मुद्दे पर ये स्ट्राइक हो रहा है।
केंद्र सरकार ने श्रम संगठनों से कहा कि उनकी मांगों पर सुनवाई हो रही है, ऐसे में वो हड़ताल न करें।
जो मजदूर है उनके समस्याओं को हम प्रतिबद्धता से पूर्ण करने के लिए इस सरकार 2 साल में काफी कुछ किया है। पुराने सरकार जो 10 साल थी, एक भी मुद्दा इनका जो है पूरा कर नहीं पाया।
छत्तीसगढ़ के वन मंत्री ने अपनी हत्या की आशंका जताई। यूएस ओपन में लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में पहुंचे। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। देश के अलग अलग मजदूर संगठनों के बैनर तले 10 लाख से ज्यादा कामगार आज देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इससे ऊर्जा, बंदरगाह और बैंकिंग सेक्टर के प्रभावित होने की संभावना है। यह हड़ताल अधिक मजदूरी की मांग के अलावा व्यापक आर्थिक सुधार के मुद्दे को लेकर हो रही है। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार की जरूरत पर बल देने की बात कही है। मजदूर संगठनों का मानना है कि अलग अलग क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के प्रवेश से नौकरियों पर इसका असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए वियतनाम और फिर G20 देशों की बैठक के लिए चीन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले वियतनाम जाएंगे, जहां रक्षा, व्यापार और वियतनाम में तेल के क्षेत्र में भारत की संभावनाओं पर बातचीत हो सकती है। इसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के हांगझो में G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगे। वेनेजुएला की राजधानी कारकास में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की मांग को लेकर उनके हजारों विरोधी सफेद टी शर्ट पहनकर मादुरो को हटाओ जैसे नारे लगाते दिखे। वहीं उनके समर्थक भी सड़कों पर उतरे। मादुरो की सरकार ने विरोध प्रदर्शन से पहले कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया और सत्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया। राष्ट्रपति मादुरो ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। वहीं विपक्ष ने प्रदर्शनों को सफल बताया है। विपक्ष के नेता हेनरी कापराइल्स ने ये कहा। जवाब सबके सामने है। वेनेजुएला के लोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, वो संवैधानिक हल के लिए लड़ रहे हैं ताकि चुनाव हो और लोग देश को संकट से बाहर निकाल सके। ये थे हेनरी के कापराइल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विवादित इस्लामिक प्रचारक साकिर नाइक की संस्था को FCRA लाइसेंस दोबारा जारी करने में कथित अनियमितता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे में हमले के संदिग्धों के जाकिर नायक से प्रेरित होने की बात सामने आने के बाद जाकिर नायक की संस्था और उनके भाषण सवालों के घेरे में है। उनकी संस्था के खिलाफ जांच जारी है। भूकंप के जबरदस्त झटके के बाद न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के पूर्वी तट के रिहायशी इलाकों से लोगों को हटा लिया गया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई है और इसका केंद्र गिस्पोन से उत्तर पूर्व में 170 किलोमीटर दूर पाया गया है। हवाई स्थित पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने ट्वीट कर कहा है कि समुद्र में आए इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत के श्रम संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज एक दिन की देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल के जरिए न्यूनतम मजदूरी, श्रम कानून लागू करने और निजीकरण रोकने जैसी 12 मांगे उठाई गई हैं। हालांकि सरकार ने कुछ दिन पहले ही दैनिक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपये कर दी थी, लेकिन वामपंथी मजदूर संगठनों को ये मंजूर नहीं है। संगठनों का दावा है कि इस साल की हड़ताल काफी बड़ी होने वाली है, क्योंकि हड़ताल करने वाले कामगारों की तादाद बढ़कर 18 करोड़ पहुंचने वाली है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सभी मजदूर संगठनों ने हड़ताल को समर्थन दिया है। केंद्र सरकार ने श्रम संगठनों से कहा है कि उनकी मांगों पर सुनवाई हो रही है, ऐसे में वो हड़ताल न करें। एक रिपोर्ट के साथ हैं अशोक कुमार।
मुकम्मल हड़ताल होने जा रहा है। द वर्कर्स लोग पूरा एक रिबेलियन का मूड में है। ये स्ट्राइक में हिस्सा लेते हुए।
ये हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी सीटू के महासचिव तपन सेन, जो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर देश के मजदूरों के तेवर तीखे हो रहे हैं। सीटू का दावा है कि देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज बुलाई गई हड़ताल में करीब 15 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे। इस हड़ताल के जरिए 12 सूत्रीय मांगें उठाई जाएंगी। इन मांगों को लेकर सीटू के महासचिव तपन सेन कहते हैं,
जो बेसिक डिमांड्स है मिनिमम वेज का पर है, लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा है और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, ठेका में जो काम चला रहा है सरकार, ये सारे मुद्दे पर ये स्ट्राइक हो रहा है।
उधर केंद्र सरकार का कहना है कि वो मजदूरों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्रम संगठनों ने जो मांगे उठाई हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में काम भी शुरू हो गया है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है, बोनस देने का भी फैसला किया गया है। ऐसे में मजदूर संगठनों को हड़ताल के फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय कहते हैं,
मैं मजदूरों को मैं जो है विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रो लेबर सरकार है और इस सरकार को सभी लोगों की समर्थन चाहिए। हमने उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग जो है उसके ऊपर पुनर्विचार करें।
वहीं सीटू का कहना है कि सरकार जो दावे कर रही है उनमें कोई दम नहीं है। सीटू महासचिव तपन सेन,
दिस इज द फर्स्ट टाइम जो सरकार ने मीटिंग बुलाया स्ट्राइकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, सरकार ने मीटिंग बुलाया जो नई स्ट्राइक कर रहा है उसको साथ स्ट्राइक का डिमांड लेके चर्चा कर रहा है। सरकार ने जो मिनिमम वेज का बढ़ोतरी का ऐलान किया वो केवल 70 लाख के लिए है, देश के टोटल वर्क फोर्स का 1% में भी नहीं आता है। टोटल 47 करोड़ वर्क फोर्स जिसका लिए हम मिनिमम वेज का मांग किया था। सिमिलरली बोनस का बारे में सरकार जो बोल रहा है वो भी लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहा है।
हड़ताल में बैंक यूनियन भी हिस्सा ले रही है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकट चलम ने दावा किया कि हड़ताल में बैंकों के 6 लाख कर्मचारी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से बैंकिंग सेक्टर के सामने गंभीर खतरे खड़े हो गए हैं।
जनता का पैसा 116 लाख करोड़, इतना ज्यादा पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर डिपॉजिट के रूप में है, उनका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा कहाँ होगा? पब्लिक सेक्टर में होगा, लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी है नोनो वो पब्लिक सेक्टर खत्म करके प्राइवेटाइज करो, वो ठीक नहीं है। आज एक ही प्रॉब्लम है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो है बैड लोन। वो बैड लोन वापस नहीं आ रहा है, 13 लाख करोड़ वो बैड लोन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है। कौन है कारण? फार्मर्स है, वो नहीं, वो बड़ा बड़ा लोग आए।
हड़ताल को कोयला क्षेत्र, बीमा, टेलीकॉम, औद्योगिक क्षेत्र और गैर संगठित क्षेत्रों के मजदूरों ने भी समर्थन दिया है। मजदूर संगठनों का दावा है कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा कार्यकर्ता भी हड़ताल में हिस्सा लेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना, आज देशव्यापी हड़ताल है, लेकिन इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं है। सीटू का दावा है कि जो मांग पत्र बनाया गया था उसमें भारतीय मजदूर संघ की भी सहमति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के चलते भारतीय मजदूर संघ हड़ताल से अलग है। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने इसे लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेता व्रजेश उपाध्याय से बात की और पूछा उनका संगठन हड़ताल से आखिरकार अलग क्यों है।
मजदूर समस्याओं के जिन प्रश्नों को लेकर के हड़ताल का आह्वान था, ऐसे कई सवालों पर भारत सरकार ने पहल करी, कार्रवाई करी है। न्यूनतम वेतन 16 साल बाद है, 40 साल से चल रही आंगनबाड़ी स्कीम पर उसको सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाए हैं, बोनस 2 गुना बढ़ा है। ऐसे सभी बुनियादी सवालों को सरकार ने एड्रेस करने की पहल करी है। तो अगर कामगारों के प्रश्न को लेकर के ये प्रयास था तो उस पर सरकार की पहल हुई है, इसलिए हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है।
इस आरोप में कितना दम है कि जब तक UPA सरकार थी केंद्र में और जब ये चार्टर तैयार किया गया था उस समय आपका संगठन भी उसको तैयार करने में शामिल था, लेकिन अब आपके ऊपर एक नैतिक दबाव है क्योंकि आपका RSS से जुड़ा हुआ संगठन है, इसलिए आप इस सरकार के खिलाफ हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं।
हम नैतिकता के आधार पर काम करते हैं। 2009 से ये साझा संघर्ष शुरू हुआ, UPA सरकार में कभी किसी सरकार ने पहल ही नहीं करी किसी मुद्दे पर बात करने के लिए। NDA की सरकार आई, इन्होंने 2015 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि बहुत सारे सवाल फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। बातचीत शुरू हुई, सरकार ने पहल करी, कुछ मुद्दों पर आश्वासन दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया। अगर हमारे सवाल सुने जाते हैं फिर भी हड़ताल पर जाना, इस प्रकार का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय भी भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को हड़ताल से अलग किया था। भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके बाकी के श्रम संगठन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के हिस्से हैं। जब भी वो राजनीतिक प्रश्नों को लेकर के मजदूर आंदोलन का सहारा या मजदूरों को राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, पीएमएस स्वयं को अलग करता है। अनुभव ये आता है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो उनका व्यवहार अलग होता है, जो विपक्ष में जाते हैं तो उनका व्यवहार अलग होता है। इसलिए देश की जो नीतियां हैं, जब तक इसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, आज जो व्यवस्था है इसका समाधान नहीं आ सकता।
आपको लगता है कि जिस आमूलचूल परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, ये सरकार उस दिशा में कोशिश करती नजर आ रही है?
इनको कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश नहीं करेंगे तो जो वायदे, जो बातें या जो आवश्यकताएं हैं इस देश की, समाज की, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी पूरा नहीं कर सकती।
ये थे भारतीय मजदूर संघ के नेता ब्रजेश उपाध्याय। वामपंथी श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है। इन आरोपों पर सरकार का पक्ष जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने ही केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से बात की।
नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो है ये प्रो वर्कर और प्रो पुअर का सरकार है। उनके 12 डिमांड्स है, 8 डिमांड जो है लेबर रिलेटेड है, 8 में से मैंने 7 को पूरा किया हूँ। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो है मुद्दा है न्यूनतम वेतन। हम लोगों ने नॉन एग्रीकल्चर अनस्किल्ड लेबर, इनके लिए हम लोग जो पुराना 264 रुपीस था 350 किया है, ये भी 2009 से जो है नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है तो बोनस भी जो है सभी हमारे ये कम से कम ये न्यूनतम मजदूरी से करीब करीब 80 लाख से 1 करोड़ जो है गरीब मजदूर को लाभ पहुंचाती है। सीलिंग जो था 10,000 से 21,000 हमने बढ़ाया, और बेनिफिट जो है कैलकुलेशन का पहले 3,500 रुपया था, अभी उसको मोदी जी का सरकार ने 7,000 करा है, और उनका पेंशन 300 जो है 50 रुपया 400 रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर 1,000 जो है मिनिमम पेंशन हमने किया है।
दत्तात्रेय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आपने फैसले गिनाए इनकी जानकारी मजदूर संगठनों को भी है, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि आपके और उनके बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है और ये स्ट्राइक का कॉल वो दे रहे हैं, और उनका दावा है कि 15 करोड़ मजदूर इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे?
अब कितने हड़ताल पे चलेंगे वो मैं दावा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा, हमने जो है सारे जितने भी जो मजदूर है उनके समस्याओं को हम प्रतिबद्धता से पूर्ण करने के लिए इस सरकार 2 साल में काफी कुछ किया है, जिसके पुराने सरकार जो 10 साल थी वो एक भी मुद्दा इनका जो है पूरा कर नहीं पाया।
कुछ मजदूर संगठनों के नेताओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि सरकार उस संगठन से बात कर रही है जिसने स्ट्राइक का कॉल नहीं दिया है, जिसने अपनी मांगे नहीं रखी हैं, हमारे साथ कोई बात सरकार की नहीं हो रही है।
ये तो वास्तव नहीं है। मैंने 18 जुलाई को सभी C2, NTU, AITUC और HMS सभी मजदूर संगठनों से मैंने बातचीत किया है, और ये भी वही मुद्दों के ऊपर जो है पहले से जो है आपको जो है 13 से दिया गया है, तो इसलिए ये हमने ट्राइपार्टाइट जो प्रक्रिया है इसको शुरुआत किया है, उसके साथ ही जो है हमारा काम चल रही है, ऐसे मतभेद कोई नहीं है।
आप क्या मानते हैं, इस हड़ताल का कोई असर होगा, कितना असर होगा?
लेबर जो है कांग्रेस लिस्ट में है, राज्य सरकार इनके ऊपर भी है, तो कौन से राज्य में क्या, कौन से सेक्टर में कैसा रहेगा, मुझे तो लगता है केवल बैंक्स और इंश्योरेंस इसके ऊपर ही थोड़ा जो है प्रभाव रहेगा।
तो श्रमिक संगठन आज हड़ताल पर है और सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार का बचाव कर रहे थे केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में राज्य के वन मंत्री ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि हत्या की कथित साजिश में माओवादी और कांग्रेसी नेता शामिल हैं। माओवादियों के एक कथित पत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाए गए इस आरोप से कांग्रेस पार्टी सकते में है और उसने पलटवार करते हुए कहा है कि बस्तर में कांग्रेस का राजनीतिक मुकाबला करने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है, इसलिए ऐसे आरोप मढ़ रहे हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस के नेताओं समेत 29 लोगों को मार डाला था। देश में किसी राजनीतिक दल पर हुए सबसे बड़े माओवादी हमले के बाद से ही कांग्रेस पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करती रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इन हत्याओं के पीछे राजनीतिक साजिश है, लेकिन 5 महीने पहले इस मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद आज तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी ओर अब बस्तर के ही बीजापुर से विधायक और वन मंत्री महेश गागड़ा ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि माओवादी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। माओवादियों से बरामद एक पत्र के आधार पर भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी पर माओवादियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है।
कहीं ना कहीं गठजोड़ जो राजनीतिक कारणों के बीच में वो स्पष्ट झलक रहा है, इसमें कार्यकर्ता थोड़ा हताश हो गए हैं। छत्तीसगढ़ भविष्य के लिए आने वाली जो पीढ़ी है जो राजनीति करेंगे सबके लिए और लोकतंत्र बेहतरी के लिए ये सब पर्दाफाश होना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि एक तो बस्तर में कांग्रेस के 29 नेता एक साथ माओवादी हमले में मारे गए, अब उल्टा आरोप लगाकर भाजपा असल में बस्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करना चाह रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का सहारा लेना शुरू कर दिया है, झूठे मुकदमे बनाना, फर्जी मुठभेड़ें, भारतीय जनता पार्टी की बस्तर में राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। राजनीतिक बदले की भावना से विरोधियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल का भी कहना है कि सरकार जगदलपुर में कांग्रेसी नेता रेखचंद जैन से लेकर बीजापुर में मिच्चा मुतैया और अब विक्रम मंडावी तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं को झूठे माओवादी मामले में फंसाने का काम करती रही है। भूपेश बघेल का आरोप है कि कांग्रेस के राजनीतिक आयोजनों को सुरक्षा का हवाला देकर अनुमति नहीं दी जाती है।
नक्सली समस्या के आड़ लेकर तो काम कर रहे हैं, इस प्रकार के फिर से पर्चा आया है, पत्र आया है कि ये अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं और अपने विरोधियों को निपटाने के लिए ये कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और निंदनीय की।
लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह इसमें किसी तरह की राजनीति से इनकार करते हुए दावा करते हैं कि वन मंत्री महेश गागड़ा की जान को वाकई खतरा है।
लगातार उसके बाद 3 अटैक तो हो चुके हैं, बड़े ब्लास्ट से भी बचा है। उसको सुरक्षा जो भी है उसको और हम लोग बेहतर करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो ये बस संभव है कि कहीं ना कहीं वो प्रमुख टारगेट में एक तो है।
आरोप प्रत्यारोप और इन बयानों के बाद पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने बताने से बच रही है। एसआईबी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी सुंदर राज का कहना था कि अभी मामले की जांच चल रही है।
जांच अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज में है, जांच के पश्चात ही उसमें कोई भी निर्णय लेना उचित होगा।
बस्तर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक लड़ाई में कथित रूप से माओवादियों के इस्तेमाल की बात नई नहीं है। दोनों ही पार्टियों पर माओवादियों के साथ मिलीभगत के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन ताजा मामले में जिस तरह से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है उससे तो ऐसा ही लगता है कि इस बार बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
रायपुर से ये थी रिपोर्ट, आप सुन रहे थे और आलोक पुतुल की रिपोर्ट थी। अखबारों की समीक्षा के साथ हरिता मौजूद हैं। हरिता, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं जिस पर मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर शख्स की नज़र कड़ी हुई है।
अब जियो मोबाइल की बात,
जियो मोबाइल की बात हो रही है, सभी अखबारों में ये छाया हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मुकेश अंबानी टेलीकॉम का चेहरा बदलने के लिए फिर से तैयार हैं। दरअसल कल जो है रिलायंस का 4G नेटवर्क कल लॉन्च किया गया और इसमें जीवन भर के लिए मुफ्त वॉइस कॉल और इंटरनेट की चार्ज को 80% सस्ता करने का ऑफर दिया गया है। ये काफ़ी अखबार के मुताबिक झकझोर देने वाला ये एक एंट्री है बाजार
वैसे,
में
वैसे इसी तरह की एक खबर, मतलब हालांकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, 251 रुपए का जब मोबाइल आया था तो ऐसा ही हड़कंप मचा था कि 251 रुपए में मोबाइल अगर आपको मिल रहा है तो फ्रीडम मोबाइल था उसका नाम।
जी, और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि रिलायंस ने डेटा युद्ध में अपना पहला वार किया है और जितने कम दामों में सेवाएं देने की बात मुकेश अंबानी कर रहे हैं इससे मोबाइल उद्योग के हिल जाने के आसार हैं। और बाकी जिस खबर की बात ज़रूरी यहाँ है, द हिंदू अखबार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का जो दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं इसका सामना करने के लिए। अखबार लिखता है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो आरएसएस पर अपनी टिप्पणी पर मुकदमे का सामना करेंगे। और उन्होंने अखबार ने दो बयान छापे हैं जिसमें पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी आरएसएस यानी कि पूरी संस्था के तौर पर आरएसएस पर गांधी की हत्या का इल्ज़ाम नहीं लगाया था, और अब उन्होंने लिखा है कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ, आज भी कायम हूँ, कल भी कायम था और आगे वाले भविष्य में भी रहूंगा और मैं मुकदमे के लिए तैयार हूँ।
इन्होंने टर्न्स एंड ट्विस्ट आते रहे हैं,
यू टर्न की चर्चा काफ़ी अखबारों में इस पर हो रही है। और आरएसएस की बात हो रही है तो कल गोवा से एक खबर थी कि वहाँ आरएसएस राज्य इकाई के प्रमुख को हटा दिया गया था उनके पद से, सुभाष वेलिंगकर। और इस पर जनसत्ता अखबार और बाकी कई अखबारों में खबर छपी है और लिखा गया है कि उन्होंने अपना, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने लिखा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और सीधे नागपुर को रिपोर्ट करेंगे। और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गोवा में हिंदुओं को धोखा दिया है। और एक एयर चीफ मार्शल अरूप राहा का एक बयान जो चर्चा का विषय आज के अखबारों में बना हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने संकेत दिया है कि अगर नैतिकता की नीति को छोड़कर सैनिक हल निकाला जाता तो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भारत का हिस्सा हो सकता था। उन्होंने वो हालांकि इस तरह के खुलकर बयान कम ही देते हैं, और उन्होंने कल ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है भारत, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर जो है वो भारत के लिए एक कांटा है।
और एक खबर का जिक्र मैं करना चाहूँगा जिससे कि हमने कल अपने कार्यक्रम में शामिल किया था, और ये जो टेप कांड था, सेक्स टेप कांड जो दिल्ली सरकार के एक मंत्री का था, इन्होंने बयान दिया है और ये कहते हैं कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझे फंसाया गया।
जी, और इस पर हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गंदी मछली को हमने तत्काल निकाल फेंका। वही संदीप जो मंत्री जिनको निकाला गया है, उन्होंने कहा कि मैं दलित हूँ इसलिए साजिश में फंसाया गया। और उनकी सीडी सामने लाने वाले ओम प्रकाश ने कहा कि कार्रवाई में 20 दिन की देरी क्यों लग गई।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता आपका।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत और पाकिस्तान, हिंदू या मुसलमान, किन चीजों को कैसे देखते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, सुनते हैं वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की डायरी।
बड़े अच्छे लगते हैं हिंदुओं को वो मुसलमान जो बुरके के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को वो हिंदू जो बीफ खाने से परहेज नहीं करते। बड़े अच्छे लगते हैं पाकिस्तानियों को वो हिंदुस्तानी जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, हिंदुस्तानियों को वो पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान के हक की बात करते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं हिंदुस्तानियों को इंग्लैंड वाले जो पाकिस्तानी टीम को धो डालते हैं, और पाकिस्तानियों को वो बांग्लादेशी जो इंडियन टीम को धूल चटा देते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं भारत में कुछ लोगों को अमरीकी सुरक्षा अधिकारी जब वो शाहरुख खान को खान होने की वजह से एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, और पाकिस्तानियों को भारत में बैठे वो दिग्गज जो अपने अवार्ड्स लौटाते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं शाहरुख खान को पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर, और शाहरुख के भारतीय फैंस को बिना पाकिस्तानी खिलाड़ियों वाली उनकी कोलकाता नाइट राइडर्स और आईपीएल की दूसरी टीमें। बड़े अच्छे लगते हैं हिंदुओं को डोनाल्ड ट्रंप जब वो मुसलमानों पर रोक लगाने की बात करते हैं, और मुसलमानों को जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब वो रिपब्लिकन होने के बावजूद ट्रंप का साथ नहीं देने की बात करते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं इंडियंस को हुसैन हक्कानी जब वो पाकिस्तानी फौज की चमड़ी उधेड़ते हैं, और पाकिस्तानियों को पंकज मिश्रा और अरुंधति रॉय जब वो भारत की बखिया उधेड़ते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं भारत को जॉन केरी जब वो दिल्ली में बैठकर बात करते हैं सीमा पार आतंकवाद की, और इस्लामाबाद को जॉन केरी जब वो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अहम साझेदार बताते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं भारत सरकार को वो खिलाड़ी जो बिना किसी खास मदद के रोते गाते ओलंपिक्स में कोई मेडल जीत लाते हैं, और भारतवासियों को खचाखच भरे हुए क्रिकेट के मैदान, सूने पड़े हुए हॉकी के फील्ड। बड़े अच्छे लगते हैं ट्रंप को हिलरी के ईमेल्स लीक करने वाले लिबरल हैकर्स, और हिलरी को ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे कट्टरपंथी रिपब्लिकन्स। बड़े अच्छे लगते हैं मियाँ साहब को नवासी की शादी पर भेजे गए मोदी के तोहफे, और मोदी जी को नवाज शरीफ के साथ कभी कभार होने वाली मुलाकातें। बड़े अच्छे लगते हैं सोशल मीडिया को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समाज सेवा के काम, और दुनिया को मोदी जी की विदेश नीति के कारनामे। बड़े अच्छे लगते हैं अमेरिका को लोकतंत्र के उसूल, और कांग्रेस पेंटागन विदेश विभाग को पाकिस्तानी फौज के प्रमुख राहिल शरीफ से बार बार होने वाली गर्मजोश मुलाकातें। बड़े अच्छे लगते हैं विदेशी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में उनके स्कर्ट पहनने पर रोक के सुझाव, और फ्रांस में आम लोगों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए समंदर किनारे महिलाओं के बुर्किनी पहनने पर रोक लगाने का हुक्म। बड़े अच्छे लगते हैं वो जो कोसते हैं मेक्सिको की सीमा पर बड़ी सी दीवार बनाने के ट्रंप के ऐलान को, और वो जो वागा बॉर्डर पर पांव पटक पटक कर एक दूसरे को दिखाते हैं आंखें। अब ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी फुर्सत थी तो फेसबुक और ट्विटर पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने बैठ गया, वहीं से ये ज्ञान मिला है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
ये डायरी तो आपने सुन ली। अमेरिका की ही बात करते हैं। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे हैं। मिश्रित युगल में गत चैंपियन पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने पहले दौर में अमरीका की खिलाड़ियों को हराया। दो दिन पहले कई वर्षों तक उनके युगल मैच के जोड़ीदार रहे भारत के महेश भूपति ने एक इंटरव्यू में पेस की आलोचना की थी और कहा था कि लिएंडर पेस ओलंपिक में पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे। न्यूयॉर्क में हमारे सहयोगी सलीम रिजवी ने लिएंडर पेस से बातचीत की, तो शुरुआत इसी सवाल से की।
ओलंपिक्स के बारे में एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महेश भूपति ने अभी ये कहा है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, कुछ कहेंगे? कुछ नहीं।
नेक्स्ट।
मेंस डबल्स में जर्मन जोड़ीदार हैं आंद्रे विगमन, तो कैसी उनके साथ आपकी पार्टनरशिप?
हाँ, ये हमारा 108वां पार्टनर है करियर में, और बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। हमारा पुराना दोस्त है आंद्रे, और हम लोग करीब ओलंपिक्स के एक हफ्ता पहले हम लोग शुरू किए थे एक चैलेंजर टूर्नामेंट इटली में, और वहाँ पे तो हम लोग जीत चुके हैं। तो ओलंपिक्स के पहले काफ़ी अच्छा मैच प्रैक्टिस रहा, हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम एक पार्टनरशिप यहाँ पे बना रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस US ओपन पे ये जो नया जोड़ी जो बने कि एक मैच करके हम लोग जोड़ी अच्छा से प्रिपेयर करें।
आपको एक अरसा हो गया खेलते हुए लिएंडर पेस, तो 23rd ईयर तो यहाँ पर है, 23वां साल है US ओपन में तो कैसा महसूस हो रहा है? ये तो एक जनरेशन गुजर गई जिसने देखा आपको खेलते हुए।
भगवान ने बहुत कुछ दिया है मेरे को लाइफ में, जिंदगी में, और जितना मुश्किल भी दिए हैं उतना भी अच्छा भी किया हमारे लिए। जिस तरह से मैं जीता हूँ, जिस तरह से मैं टेनिस खेलता हूँ, उसी तरह से मैं लोग को खुशियाँ लाएँ, लोग को मोटिवेट करें कि लिएंडर जीत सकते हैं तो मैं भी जिंदगी में जीत सकते हैं।
फिटनेस कैसे आप इतनी रखते हैं, 43 इयर्स आपकी, 43 सालों
सॉलिड फिट दिख रहा हूं,
बिल्कुल फिट दिख रहा हूं कैसे करते
हैं? बहुत मेहनत करते हो फिटनेस पे, और इस साल काफ़ी मुश्किल साल रहा। हमारा बेटी जो है वो तो न्यूरोसर्जरी थ्रू हुए थे आज इस साल अप्रैल मई में, 10 महीना के लिए बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए। अभी लाइफ जो है वापस टेनिस पे ध्यान दे रहा हूँ, और जिस तरह से हम ओलंपिक के पहले खेले, जिस तरह ओलंपिक के बाद खेल रहे हैं, ये बहुत महीना का एफर्ट, बहुत महीना का काम है। ये आसान बात नहीं है कि इस उम्र पे फिर से मोटिवेट होके फिर से मेहनत करके वापस हर दिन हम ऐसा खेलें। जैसा आपने कहा, 8 जनरेशन आके चले गए, और ये नया जनरेशन जो है एकदम क्या फिट है, ये लोग सब 6'7", 6'10" एकदम क्या सर्व मारते हैं, इतना फिटनेस है, क्या फिट है ये लोग।
जाहिर है कि ये फिटनेस तो अपनी जगह, लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस भी वो कोर्ट पे दिखता है।
हाँ, काफ़ी अपोनेंट्स डरते हैं जब कोर्ट पे पहुंचते हैं हमारे साथ, मगर वो डर से वो एकदम ऑल आउट जाते हैं, तो हमारे लिए कुछ मैच भी आसान नहीं होते, क्योंकि जितने अपोनेंट्स हैं वो एकदम मेहनत करते हैं कि चलो लिएंडर को हराते हैं, और उन लोगों को पता है कि वो खाली 70-80% खेलेंगे तो ज़रूर हारेंगे, तो एकदम 100% 120% कोशिश करते हैं खेलने में, और कभी कभी लगते हैं शॉट। हर मैच जो है काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए।
डेविस कप में आप और बोपन्ना खेल रहे हैं, साथ सिलेक्शन हो गया है, तो क्या आप देख रहे हैं डेविस कप की तैयारी कैसे, क्या तैयारी?
नेक्स्ट डेविस कप काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए, स्पेन के साथ खेल रहे हैं, और वो भी हार्ड कोर्ट पे और रात के समय में, तो देखेंगे, एकदम दिल लगा के एकदम खेलेंगे झंडे के लिए और देश वालों के लिए, मगर मुश्किल मैच रहेंगे जरूर।
लिएंडर पेस से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी सलीम रिजवी। और अब कार्यक्रम में से पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। देश के अलग अलग मजदूर संगठनों के बैनर तले 10 लाख से ज्यादा कामगार आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए वियतनाम और फिर G20 देशों की बैठक के लिए चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाई की संस्था को FCRA लाइसेंस दोबारा जारी करने में कथित अनियमितता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। भूकंप के जबरदस्त झटके के बाद न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के पूर्व तट के रिहायशी इलाके से लोगों को हटाया गया। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।